हर फिरका अपने आप को उस मसलक पे कहता है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था कि ये निजात पाएगा। आज देखिए वो हदीस कितनी मिसकोट होती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे 73 फिरके हो जाएंगे, 73, और उसमें से एक नाजी होगा, निजात पाने वाला, सेफ सेक्ट होगा, और 72 जब वो नारी होंगे आग में जाने वाले। सहाबे करम को फौरन गम लग गया, अल्लाह के नबी वमा हूँ, वो कौन होंगे? कहा वमा अना अलैहि व सहाबिही, वो उस पे होंगे जिस पे मैं और मेरे सहाबा। अब लोग हर बंदा इस हदीस को कोट भी करता है और नीचे चुपके से लिख देता है कि ये बस फिरका हमारा ही है। हमारी सोच सीधी कुरान और सुन्नत, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल। इस जुबान से, इस जगह से अब कभी अल्लाह और उसके रसूल की बात के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। उसमें फ़र्क होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, लेकिन जब आप अपनी निस्बत पीछे हटा लेते हैं तो बात कैसे बनती है? मिसाल देखिए, अगर आप बोर्ड पे रखें कुछ, मैं आपको चीज़ दिखाऊं कि एक चीज़ यहाँ है, यहाँ से शुरू हुई, ये अल्लाह के नबी सल्लम का दौर था, सबसे ऊपर टॉप क्लास, ये अबू बकर का, ये उमर का, ये उस्मान का, चलते थे यहाँ, समझें कि पहले इमाम है ना, इमाम अबू हनीफा, और यहाँ नीचे हम खड़े हैं, हम यहाँ से ऊपर चढ़े, हम यहाँ पे रुक गए। तो बताइए जो बीच के लोग थे ये किस दौर पे थे? अगर आप कहते हैं कि एक मसलक को अपनाना लाजमी है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लेके जो अल्लाह के नबी तक के जो दौर के लोग थे वो किस मसलक पे थे, पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ क्यों रुकते हैं? बीच का जो दौर है, आप कोई भी चीज़ लें, प्योर कहाँ से मिलेगी? जहाँ से वो निकलती है। आपको प्योर गोल्ड चाहिए तो आप उन माइंस में जाएंगे जहाँ से गोल्ड निकल रहा है। आपको दूध चाहिए, भैंस का दूध भैंस के करीब से खालिस मिलेगा ना, कोई शक ही नहीं कि उसमें किसी ने कुछ डाला, आपने उसके थनों से निकाला और आपने कहा ये लीजिए ये खालिस दूध है। आप उसके बाद किसी दुकान पे लाते हैं, हो सकता है कोई कुछ ना डाले, फिजा से ऊपर कुछ मिट्टी गिर जाए, हो सकता है कहीं कीड़ा गिर जाए, हो सकता है वहाँ पानी डल जाए, हो सकता है उसमें से कुछ निकले। हम नहीं कहते कोई करता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। जब उन्होंने वहाँ से लिया तो हम वहाँ से क्यों नहीं ले सकते? बेसिक सोर्सेज पे जाने वाला बंदा वही आगे बढ़ता है। हम जब दूसरों की सोच पे रहते हैं ना, तो उसकी वजह से हम खुद भी फायदा नहीं पाते। दुनिया में हम कई दफ़ा ये एक दिन में कई कई बार कर रहे होते हैं, नहीं खुद अपने हाथ से कर लो, किसी और की सोच पे क्या रहना, ये मैं खुद ये काम कर लूँगी, और जो बंदा वो काम कर पाता है वो फिर दूसरों का मुख्ताज नहीं रहता। हम मुसलमान हैं, हुवा सम्माकुम अल-मुस्लिम। यहाँ फिर एक और बात कहूँ, इस मौजू पे ना एक SCD है बनी हुई, तो बहुत डिटेल तो नहीं, उसमें भी इशारतन ही जिक्र हुआ था, अपनी कदर पहचानो, वैल्यू योर सेल्फ, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ऑनलाइन पे है, मैंने कल भी देखी है। यानी ये जो फ़िरका वारियत ने खुन की तरह हमारी उम्मत को खा दी है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस वक्त दुश्मन हमें सिर्फ इसलिए मारने को तैयार है कि हम मुसलमान हैं, जब उसकी गोली चलती है ना तो वो ये नहीं पूछता कि तुम सुन्नी हो कि शाफी हो कि वहाबी हो, वो इसलिए मारता है कि आप मुसलमान हैं, और मुसलमान सिर्फ इसलिए आपस में लड़ रहा है कि वो दूसरे को देख नहीं सकता। नॉन मुस्लिम से मिलेंगे तो इतने प्यार से मिलेंगे, और अपने ही मुसलमान दूसरे फिरके से मिले तो ऐसे लगता है कि ये नापाक लोग हैं। मस्जिदें धोई जाती हैं एक दूसरे के नमाज पढ़ने पर, आप क्या बात करते हैं? यानी ये तो एक नासूर है जिसने इस वक्त उम्मत को खा दिया है। आज उम्मत इस तबाहियों के दौर में गुजर रही है कि असल किताब से दूर हुए। सबसे बड़ा इसका नुकसान क्या हुआ कि आप असल सोर्सेज से दूर हो गए। 8 साल का कोर्स आपके मदरसों में कराया जाता है आपको आलिम बनाने के लिए या आपको मुफ्ती बनाने के लिए, और उसमें पूरे 8 साल में आप जो पढ़ते हैं वो काल अल्लाह और काल रसूल नहीं होता, काल अबी हनीफा, काल अबी हनीफा, काल अबू यूसुफ, काल फुलां, काल काल, यानी आपकी ज़ुबान उससे ऊपर नहीं जाती। आखिरी साल में आपको कुरान पाक का कुछ हिस्सा पढ़ाया जाता है, आपके 8 सालों में पूरी कोई एक हदीस की किताब कोर्स में नहीं होती, इल्ला माशाल्लाह किसी की कोई हो जो मारूफ कुलिये हैं, आपको कुदूरी पढ़ाई जाएगी, आपको हदाया पढ़ाई जाएगी, आपको उसके सिलेक्टेड बाप पढ़ाए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है जो उसकी ठीक चीज़ें आप पढ़ें, लेकिन ये क्यों आप कहते हैं कि जो आपने पढ़ ली इसके अलावा कुछ ना पढ़ें? मुझे तो इस बात से वैसी बू आने लगती है जब कोई ये कहते हैं ना कि ये किताबें पढ़िए इसके अलावा और कोई ना पढ़े। यानी कुछ लोग हैं कहते हैं ये खास हमारी छपी हुई किताबें, इसके अलावा आप कुछ ना पढ़ें, फौरन समझे समथिंग इज़ रॉन्ग। यानी मैं आपको कहूँ ना कि आप यहाँ आके बैठे हैं क्लास ले रहे हैं, इसके अलावा अब आप इस शहर में और कोई क्लास ना लें तो आप फौरन मेरे पे शक करिएगा कि ये क्या बात है। अगर आप मेरे साथ लगे हैं ना तो आपको कहीं और नहीं लगना। देखिए आप अपना काम ही ऐसा करें कि कोई जाए ही ना, आप क्यों लोगों को पाबंद करते हैं? आप क्यों लोगों के गले में तकलीद के फंदे डालते हैं? क्वालिटी जीतती है, नाम नहीं जीतते। आप किसी को उसके साथ कसमें हलफ करवा लें ना, किसी से हलफ उठवा लें कि तुम मेरी मदद करोगे और इससे हटोगे नहीं, तो अगर आप वहाँ उसको फ़ायदा नहीं दे रहे, वो हटेगा। मुझे किसी का एक फ़ोन आया कुछ दिन पहले, आने से पहले की बात थी, बहुत परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी इस तरह हम कहीं पढ़ते थे, फिर क्या हुआ, पढ़ने के बाद ऐसी हम सबकी मीटिंग हुई, सब बैठे, उन्होंने कहा जी के आप बताएं कि आइंदा आप कुछ काम साथ करना चाहते हैं, सो ऑन। हर बंदा जो सीखता है उसका दिल जाता है हम हेल्प करें जिसको फायदा। उन्होंने कहा जी हम करेंगे, हेल्प करेंगे, ये फॉर्म फिल कर दें। कह रही हमें कुछ नहीं पता था ये फॉर्म हमसे क्या फिल कराए जा रहे हैं, फॉर्म फिल कर दें बस, ये कहा आपकी हमारे पास लिस्टें बन जाएंगी। इन्होंने कहा, मैंने भी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये खातून बहुत, मैं जानती हूँ पर्सनली, बहुत अच्छी तरह, बहुत दिल वाली हैं, अल्लाह ने दिल में इनके दर्द रखा है, हर एक की मदद करना चाहती हैं। कुछ पीछे से अपनी माँ के वक्त नाम पे किसी मदरसे की हेल्प भी करती थी, और जहाँ इनको नेकी का मौका मिलता है ना, ये फौरन चल पड़ती हैं। इन्होंने किसी महफिल में खड़े हो के, वो किसी पाकिस्तान की ये बात है, करीब का कोई बस्ती थी, तो इन्होंने ऐलान किया कि वहाँ एक मदरसा है, गरीब है और उनको मदद की ज़रूरत है, तो आप मदद करें और जिसको कुछ करना है वो कर दें। अब कहती मुझे क्या पता कि यहाँ जो लोग आए हुए वो क्या सुन रहे हैं। उनमें सुनने वाले लोगों में किसी ने बात आगे पहुँचा दी कि फलां औरत जो वो तो जी आपके स्कूल की और आपके इदारे से जुड़ी हुई है, लेकिन कल तो ये किसी और के लिए ऐलान कर रही थी। कह रही जो हमारी मैनेजमेंट की जो भी इनकी लीड टीचर थी या वट एवर, उन्होंने इनको बुला लिया कि भाई आपने तो हमारे साथ हलफ बर्दारी की हुई है, तो आप तो आप नहीं किसी और को स्पॉन्सर कर सकती, आपको तो हमारे अपने इस नाम को करना चाहिए, अब आपकी पहचान है। इन्होंने कहा क्या, कैसे, क्या हुआ? कहने की हमें पता चला है कि आप दूसरी जगह जाके लोगों को और इदारों के लिए जमा करवा रही हैं और उनको कहती हैं कि आप इस तरह की, लंबी कहानी हुई। अब ये परेशान है, कहती मेरे सर पर जो बोझ है कि वो कहती आपने हल्फ उठाया हुआ है और हल्फ का मतलब कसम होती है, और आप तो गद्दारी करेंगी और आपकी अब सारी हमदर्दियां हमारे इस नाम से हो। कहेंगी मैं अपनी बूढ़ी माँ की जो मेरी दुनिया से जा चुकी है, मैं उसकी नियत से हर महीने कई इदारों में देती हूँ, तो आप कहते मैं सबको छोड़ के सिर्फ आपके इदारे को दूँ? इन लफ्जों से उसका दिल खट्टा हो गया। इतना फायदा उठाने के बावजूद जब आप लोगों को पाबंद करते हैं ना, तो फिर लोग जो हैं वो उस दिन पे नहीं रहते। आप क्यों इस तरह, अल्लाह के नबी ने कभी ऐसी नहीं की। आप सुन सीरत में कल पढ़ चुके, बैत हुई थी, बैत ये नहीं हुई थी कि तुम अपना नाम उम्मत मोहम्मदी के साथ जोड़ोगे, तुम कसम दो तुम यहूदियों में नहीं जाओगे, नसारा नहीं, ये काम करोगे, अल्लाह शिर्क नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। आप अल्लाह लोगों को अल्लाह से जोड़े, आप अल्लाह से जोड़ेंगे वो आपसे भी जुड़ जाएंगे। नतीजा क्या निकला कि दिल बुरे हो गए। तो मैंने कहा आप क्या करें? मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, आपका दिल नहीं मुतमईन इस पर, आप कसम का कफारा दे दें, दैट्स इट। कहती नहीं, फिर हमें ये हदीस सुनाई जाती है कि अगर आप जमात से अलग हो जाते हैं तो आपको जहालत की मौत मरेंगे। एक हदीस है जिसको इतना मिस इंटरप्रेट किया जाता है, शायद आपने भी कभी सुनी हो, कि जिसने अपने गले से जमात का फंदा उतार दिया वो जहालत की मौत मरेगा। तो मैंने कहा उस हदीस को पूरा कभी आपने सुना? कह रही नहीं। मैंने कहा मुझसे सुने। उस हदीस के आगे क्या है कि जिसने तासुब की पुकार लगाई उसने जाहिलियत की पुकार लगाई। कह रही ये तासुब क्या होता है? मैं कह तासुब यही होता है कि मेरी जमात, मेरा ग्रो, मेरा कुंबा, यही बस अच्छा है, बाकी अच्छा नहीं। कहती देखे, यानी आधी हदीस बहुत कोट होती है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले आइमाए कराम, उनकी इज्जत सर आंखों पे, इमाम अबू हनीफा, ये इन सब के नाम ले लेके हमें मोहब्बत आनी चाहिए। लेकिन ये ऐसे ही इमाम है जैसे आज इमाम काबा होंगे, आज जैसे सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हर दौर में हर शहर में इमाम होते हैं, आपके मस्जिदों के लोग जो आपकी खिदमत करते हैं, जो आपको दीन सिखाते हैं, ये आपके इमाम हैं। हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है। किसी को उर्दू जुबान में अच्छा लगा वो उर्दू में कर पा रहा है, कोई बेचारा इंग्लिश में कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है, कोई फ्रेंच में कर रहा है। आप उनसे फ़ायदा लें, फूल है उसकी खुशबू सूंघें, आपको जो खुशबू अच्छी लगती है लेते जाएं, लेकिन आप अपने आप को एक चीज़ के साथ जोड़ के कहें कि इससे बाहर नहीं जाना, तो फिर मान जाइए कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी से वो काम नहीं हुआ जो हमारे आइमाए कराम ने कर दिया। कई मुगालते हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं सवाल, इसीलिए मैं साथ साथ जवाब दे रही हूँ, जो लोग देते हैं जी नहीं हदीसें तो बहुत सारी होती हैं, उलझी होती हैं, बहुत बिखरी बिखरी हैं, और इससे हमें अमल मिलता है और ये काबिल अमल है बातें। भाई इसका मतलब ये है कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के भी बड़े डिसऑर्गेनाइज थे, वो तो इल्म को इस तरह पाइल अप कंपाइल नहीं कर सके कि आप और मेरे जैसे लोग अमल करें, तो बाद में लोगों ने इस पर अमल कर लिया। जी आप बताए कौन कहता है ये? बस आप अल्लाह से दुआ करें कि आपके नसीब जाग जाए, दुआ करें कि एक दफा सूरत फातिहा से सूरत नास तक कुरान पढ़ लें, आप कोई ऐसा बंदोबस्त करें, यकीन करें आपको जमीन पे बैठना पड़ा हम बैठ के पढ़ने को तैयार हैं। एक दफ़ा अरेंज कर लें कोई चीज़ कि आप भी और आपके बच्चों में जो लड़कियां फारिग हैं बैठ के सिर्फ कुरान के हर लफ्ज़ को उसकी कुरान और सुन्नत की रोशनी में पढ़ लें, आपके ये सारे सवालों के जवाब आएंगे। यकीन करें मेरा दिल रोता है इस बात पे। मैं कहती हूँ लोग कहाँ जा रहे हैं, लोगों को इतनी बेहयाई है, इतनी बुराई है। आप तो यहाँ छुपे बैठे हैं, आप अपने मुल्कों में फ़ोन कर लें तो आप कहते हैं वहाँ इतनी बेहयाई है, आप वेस्टर्न कल्चर्स को देखें तो आप कहते हैं नस्लें भाग रही हैं, लड़कियां भाग रही हैं, लड़के चले गए, मर्द जो हैं वो घरों में नहीं है, बीवियां रो रही हैं, मर्दों की निगाहें कहीं हैं, कहीं इकोनॉमी डूब गई, कहीं कुछ। ये सारे मसले क्यों हैं भाई? एक ही वजह है कि जो अल्लाह की किताब को छोड़ता है ना, फिर अल्लाह उसको दुनिया में भटकने के लिए छोड़ता है। ये अजाब आए हुए हमारे ऊपर, ये बेहयाई का अजाब है, ये हमारे ऊपर बुरी औलादों का नाफरमान होना अजाब है, हमारे पेट में जो जाता है हमें नहीं पता वो किस तरह का जा रहा है। तो इसका इलाज बातें नहीं है, नारे नहीं है, कोई जोश लोगों को दिला के घर जाके सो जाना ये नहीं। हम भरपूर तकरीरें करते हैं, खूब आके मार डाइस पे मुक्के मार के बातें करते हैं और बाद में कहते हैं रात को हमें मेहंदी में जाना है। यानी आप देखिए कि उम्मत की हालत नहीं बदल सकती जब तक हमारे अंदर ये ख्याल और ये शौक नहीं आ जाता कि हमने अल्लाह के नबी के तरीके से दीन को लेना है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मक्की दौर मदनी दौर शुरू हो रहा है, आपके ऊपर एक नया चैप्टर खुलेगा। कैसे किसी जगह को दीन के लिए आबाद किया जाता है? आज भी यकीन करें ये वीरान बस्ती हैं। दुनियावी तरक्कियों के आला मुकाम पे क्यों नहीं आज हमारे घर में दुनिया की हर नेमत और हर मशीनरी क्यों नहीं, लेकिन वो जगहें वो बस्तियां जहां अल्लाह का नाम नहीं वो बिल्कुल वीरान है, मुर्दा बस्ती हैं, वहां अपने कुरान के और इस्लाम के बीज डालने हैं। जी देखिए मक्की दौर तो आप सीरत का पढ़ ही चुके हैं ना तकरीबन, आपने अभी तक कोई एक ऐसी बात पढ़ी कि अल्लाह के नबी बैठे हैं और सहाबा बैठ के आपकी जुल्फों के किस्से गा रहे हैं, आपकी आंखों की बातें कर रहे हैं? मिराज का वाक्य हमने पढ़ा ना, आपको कोई उसमें एक भी लगा कि आपने अगले दिन बैठ के कहा कि आओ बैठो मैं तुम्हें सुनाता हूँ और तुम मेरी बातें सुनो? आज जो मिराज के मौके पर रातों को नात ख्वानी होती है, कभी आप सुने, शिर्क से भरी हुई होती है। बस आप अपने लिए दुआ करें, मैं तो कहती हूँ आप सबको छोड़ दें। जितने आप लोग बैठे हैं ना, यकीन करें अगर आप बच्चियाँ 1-1.5 साल के लिए अपना स्कूल छोड़ देती हैं ना, आप वो रहमत की बारिश बनेंगे अपने इलाकों के लिए कि जो शायद आपकी महीने की 20-25 हज़ार की पे भी नहीं वो फ़ायदा दे सकती अपने घर वालों को। रिक्वेस्ट कर लें, ख्वाहिश कर लें, तड़प पैदा करें कि एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को सीखना है, और आपको जो सिखाएंगे आपके सामने होगा कि ये कोई किसी फिक की रोशनी में या किसकी रोशनी में, ना किसी मसलक की रोशनी में ना किसी जमात, आपकी सारी हमदर्दियाँ अल्लाह के दीन के साथ होंगी, ना कोई नाम है। आपने एक दफ़ा भी यहाँ बैठ के किसी इदारे का नाम सुना कि आपको कहा आप उस इदारे से जुड़ें? नूरुल कुरान का लफ्ज़ भी शायद मेरा नहीं ख्याल आपने कॉन्शियसली मेरे से सुना हो। कभी आपको फील हुआ यहाँ आके कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे रुकन बने या आप हमारे साथ जुड़ें? एक ही बात है, एक दफ़ा मैं कहीं थी, मैं आपको वाक्य याद आ गया, मैं किसी ट्रिप में थी, स्टूडेंट थी एक, उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ था, यानी आप ये कह लें कि जिसको हमारे यहाँ कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं, उसका ऊपर नीचे घर भरा हुआ था, और खुश थी, जोश में थी। फिर जब दर्स ख़त्म हुआ माइक पे आई, आप प्लीज़ आप लोग नूरुल कुरान से जुड़ें, उसने ये बात कही, आप आए देखिए आपको पता है कितना अच्छा पढ़ते हैं ये वो। मैंने उसके हाथ से सबके सामने माइक लिया, ऑनलाइन भी आ रहा था प्रोग्राम, मैंने कहा देखिए मैं इस बच्ची की बात की सलाह करूंगी, इसने आपको कहा कि आप नूरुल कुरान से जुड़ें, मैं आपको कहती हूँ आप कुरान से जुड़ें, नूर खुद ही आ जाएगा। मैंने कहा हमारी दावत नूरुल कुरान की नहीं है, हम किसी जमात से नहीं बुलाते आपको, हम कहते हैं हम कुरान से जुड़ जाए। हम जब तक ये नामों के उलझनों में पड़े रहेंगे ना, देखिए हम करते हैं शुरू अल्लाह के दीन का नाम काम और बाद में वो बन जाता है हमारा नाम। आज उम्मत मुस्लिमा का जो मसला है वो बहुत बड़ा है, जो इस वक्त हमारा मौजू नहीं, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हक दिखा। एक दुआ सिखाती हूँ आपको भी, अगर आप अपने लिए पढ़ें, कभी भी पढ़ने बैठे ना तो ये दुआ पढ़ के बैठें, अल्लाह के नबी सल्लम की सही रिवायत से सिखाई हुई दुआ है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरजुकना इत्तबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरजुकना इज्तनाबहु। इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह मुझे हक को हक करके दिखा, यानी हक मुझे हक ही दिखे और मुझे उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को मेरी नज़रों में बातिल करके दिखा और मुझे उससे इज्तनाब की तौफीक दे। मैंने अपने कुरान पाक के बाहर बिल्कुल जो मेन पेज है ना, वहाँ एक स्टिकी नोट पे ये दुआ लिख के लगाई हुई थी जब कभी मैं बिल्कुल अपने अर्ली स्टूडेंट एज में थी, कि अल्लाह इस दीन के नाम पे भी जो सुनो तो हक दिखाना। यकीन करें कि दुनिया के नाते से तो लोग बेचारे भटके हुए होते ही हैं, मुझे उस उन पे तो तरस आता है, उनसे तो मुझे प्यार महसूस होता है, लेकिन जो दीन के नाम पे भटकते हैं ना, उनके लिए मेरा दिल रोता है। और अपनी दुआ में ये शामिल किया करें कि अल्लाह दुनिया में तो हम थे ही भटके हुए, ख्वाहिशों के गुलाम थे, मुआशरे के गुलाम थे, बिरादरियों के गुलाम थे, लेकिन अब दीन के नाम पे हक देना। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं, हमारी इतनी जिंदगी ही नहीं है कि हम तजुर्बे ही करते रहें। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, आज दीन के साथ ये मामला हो रहे हैं। लोग सारी जिंदगी एक्सपीरियंसेस में गुजार देते हैं और एंड ऑफ द डे निकलता क्या है। आपने एक बहुत मारूफ स्कॉलर है, इनका ये जुमला बहुत मशहूर हुआ था, एक मैगजीन में भी आता, अनवर काश्मीरी, शायद आपने इनका नाम सुना, बहुत फ़िक्र हनफी के बड़े इमाम थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमात हैं। बहुत कुछ कहानी थी, लेकिन जब अपने बिल्कुल करीब थे अपने, यानी इन्हीं की कहानी है या इनकी ज़ुबानी किसी के, इस वक्त मुझे याद नहीं, मैं अपने हाफ़से से सुना रही हूँ ये बात, तो बहुत परेशान थे जब डेथ बेड पे थे, तो कहने लगे कि भाई दोस्त, हमने तो ज़िंदगी ख़राब कर दी, ज़िंदगी ज़ाया कर दी। तो लोगों ने इनके मुँह से ये बात सुन के कहा कि भाई आपकी अगर ज़िंदगी ज़ाया हुई है तो फिर हमारी ज़िंदगियों का क्या मामला है, आपने तो सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की। तो कहने लगे कि दीन की नहीं खिदमत की, फ़िक्र हनफी की खिदमत की है, हमारी तो सारी गुफ्तगुओं, सारी दावतों और सारे दरसो तदरीस का एक ही खुलासा था कि फ़िक्र हनफी की फोकियत दूसरी फ़िक्हात के ऊपर डाल दें। तो मुझे तो लगता है कि हमने सारी ज़िंदगी फ़िक्र हनफी की खिदमत की है, दीन इस्लाम की नहीं की। आप सोचिए ये बातें क्या हैं, कि मैं सोचती हूँ कि जब इंसान अकेला बैठता है तो उसका दिल उसको बताता है, और आपको पता है कि बाज़ चीज़ें लोगों के दिल मान जाते हैं लेकिन वो दूसरों के सामने उसका इकरार नहीं करना चाहते। मक्का वालों के दिल मान चुके हुए थे अल्लाह के नबी सल्लम की सच्चाई को, उनको पता था यही है वो रहनुमा जिसके हाथों में अब हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन कहते थे हो तौबा तौबा, हम नहीं मानेंगे, खामखा इसकी बात मान ली तो हम नीचे हो जाएंगे। इत्तबाए सुन्नत के मसाइल बुक में से हम आइए अगली आयत बातों को देखते हैं कि आइमा कराम जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को क्या मुकाम देते थे। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक हदीस पर अमल करना हिदायत है और हदीस के बरक्स अमल करना गुमराही और फसाद है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, लोग उस वक़्त तक हिदायत पर कायम रहेंगे जब तक इनमें इल्म हदीस हासिल करने वाले मौजूद रहेंगे। जब हदीस के बग़ैर दीन का इल्म हासिल किया जाएगा तो लोगों में बिगाड़ और फसाद पैदा हो जाएगा। शारानी ने इसको मीज़ान, यानी ये मीज़ान किताब का नाम है, उसमें ज़िक्र किया। सुन्नत रसूल की मौजूदगी में राय दरियाफ्त करने वाले को इमाम मालिक रहमहुल्लाह की फितने में पड़ने या अजाब में मुब्तला होने की तंबीह। एक आदमी इमाम मालिक के पास आया, कोई मसला दरियाफ्त किया। इमाम साहब ने बताया कि इस बारे में रसूलुल्लाह का इरशाद मुबारक ये है। इस आदमी ने अर्ज़ किया, इस बारे में आपकी क्या राय है, यानी हदीस सुन ली, फिर कहा कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। इमाम मालिक ने जवाब में यह आयत तिलावत की, फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं, इन्हें डरना चाहिए कि वो किसी फितने या दर्दनाक अजाब में मुब्तला ना हो जाएं। ये सूरत नूर की आयत है, गालिबन 63 नंबर की आयत है, और ये रिवायत शरह सुन्ना में है। यानी ये देखिए कि अब हदीस के बाद कहना, ये ठीक है हदीस तो है, अब आपका क्या फतवा है, आपकी क्या राय है। तो दीन में राय की कोई गुंजाइश नहीं है, राय तो यही है कि हर बंदा अपनी मर्जी से कुछ भी कहे, तो लिहाजा सही हदीस के मुकाबले में दूसरी बातें जो हैं वो उसकी अहमियत नहीं रहती। सुन्नत रसूल के बारे में इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के बाज़ अक़वाल, इस बात पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि जिस शख्स को सुन्नत रसूल मालूम हो जाए, इसके लिए किसी आदमी के कौल की खातिर सुन्नत को तर्क करना जायज़ नहीं। इब्ने क़य्यम और फ़लानी ने इसका ज़िक्र किया, जब मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के ख़िलाफ़ बात करते देखो तो समझ लो मेरा दिमाग चल गया है। इब्ने अबी हातिम और इब्ने इसाकर की रिवायत, ये अपने बारे में कह रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कह रहे, हम आज यही बातें दूसरों के लिए कहते हैं। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब सही हदीस मिल जाए तो मेरा वही मज़हब है। नीस फरमाया, जब मेरा कॉल हदीस के ख़िलाफ़ पाओ तो हदीस पर अमल करो और मेरा कॉल दीवार पर दे मारो। इसका ज़िक्र अक्दुल जैयत में है, ये किताब का नाम है, ये सब अरबी की किताबें हैं इसलिए नाम थोड़े से आपको अनफेमिलियर लग रहे हैं। देखिए कि वो कह रहे हैं कि मेरे कॉल को छोड़ दो, तो इससे आपको लग रहा है ना कि आयमे कराम का मसलक क्या था। कोई ये भी तो पूछे कि आयमे कराम का अपना मसलक क्या था, कोई एक रिवायत मिलेगी आपको कि इमाम अबू हनीफा के कि मेरा मसलक हनफी है। और आपको पता है कि ये जो टर्म्स शुरू कैसे हुई थी, ये पहले दौर का रिवाज था कि लोग उस्ताद के नाम पे उनको मंसूब कर देते थे। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट जगहों में रहने वाले लोगों को उससे निस्बत दे दी जाती है ना, मतलब कोई लाहौर में रह रहा है तो उसको लाहौरी कह देंगे, सियालकोटी का लफ्ज़ बोल दिया जाता है, ये निस्बत होती है। उस दौर में क्या होता था कि लोग जिस उस्ताद से पढ़ते थे ना, तो मोहब्बत की वजह से उसको उसके नाम से मुखातिब करते। मसलन जो दौरे कदीम के जो हनफी थे ना, वो कौन हनफी थे? जिन्होंने इमाम अबू हनीफा से सीखा। वो हनफी नहीं थे जो आज के दौर में कि इमाम अबू हनीफा की बात को लेंगे और किसी और को नहीं लेंगे। मालिकी वो थे जो इमाम मालिक से फ़ायदा लेते थे। आज भी दुनिया में इस तरह की कुछ हैं सनदें के जिसमें आपको इदारों या उन जगहों की तरफ जोड़ दिया जाता है। तो बहरहाल इनका मज़हब जो है बहुत वाज़े था। इमाम अहमद बिन हम्बल किसी आदमी के कॉल की खातिर सुन्नत रसूल को तर्क करना हलाकत का बायस समझते थे। फरमाते, जिसने रसूलुल्लाह की हदीस को रद्द कर दिया वो हलाकत के किनारे पर खड़ा है। इसका जिक्र इब्न जौजी ने किया। इमाम अहमद फरमाते हैं, इमाम औज़ाई, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा में से हर एक की बात राय है और मेरे नज़दीक सबका एक जैसा दर्जा है। हुज्जत सिर्फ सुन्नत रसूल है। इब्न अब्दुल बर ने जामे में इसका जिक्र किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरह सदर है कि ये लोग सही अकीदे पे थे और आज भी इंशाल्लाह ताला इनकी तालीमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी एक के साथ अपने आप को जोड़ के बाकी के इल्म को ज़ायल कर देना या बाकी समझना, देखिए कैसे ही है कि जैसे आप एक चीज़ के चार टुकड़े करें, रोटी है ना, आप उसके चार टुकड़े करें। अब आप कहते हैं बस मुझे एक ही टुकड़ा चाहिए, तो आपने तीन ज़ाया कर दिए ना। जब आप एक इमाम को लेते हैं तो तीन इमामों के टुकड़ों को छोड़ देते हैं ना। अल्लाह के नबी की एक हदीस, आप इसको बल्कि ख़ुद भी याद कर सकते हैं, बड़ी प्यारी सी छोटी सी हदीस है ना। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। दीन में हर नई चीज़ बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना आग है। ये निसाई की रिवायत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो कलाम या कोई अपनी स्पीच, कोई बात शुरू करते थे तो उससे पहले ये बात पढ़ते थे।